نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب. آج هم إن شاء الله تعالى سورة آل عمران آيات نمبر 172 سے 185 تک کریں گے. دیکھتے ہیں ہم کہ آج کے لیسن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا، کیا بتایا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی ہمیں بتاتا ہے اس میں ہماری خیر خواہی ہوتی ہے، ہمیں کچھ سکھانا ہوتا ہے، کچھ بتانا ہوتا ہے، ہماری کچھ اصلاح کرنی ہوتی ہے. اور یہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، رہتی دنیا تک لوگوں کو انہی آیات سے اپنے لیے رہنمائی ملتی رہے گی، اپنے لیے سبق ملتے رہیں گے. یہی اس قرآن کا معجزہ ہے کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں یہ عہد والوں کے لیے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، چلو جی آپ پڑھ کے ہم آگے چلیں. نہیں، یہ ہر شکست خوردہ کے لیے، ہر اس کے لیے جس کو زخم لگے، ہر اس انسان کے لیے جو ایک پریشانی سے غم سے گزرے. کیوں غم آتے ہیں ہمارے پر، کیوں آ جاتے ہیں غم؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم فلاں کر، ہمارے پر کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ان کے جواب ہیں یہاں پہ، اور وہ تسلیاں یہاں پہ جو کوئی بھی آپ کو نہیں دے سکتا. جب حالات خراب ہوں انسان کے لیے زندگی میں، اور ایسا ہوتا رہتا ہے، زندگی ہے نا یہ، اس میں اپس ہیں، ڈاؤنز ہیں، کئی دن اچھے ہیں، کئی دن ایسے ہیں کہ بالکل ڈاؤن دن ہیں، پھر ان میں بولنا کیا ہے؟ کیسی باتیں منہ سے نہیں نکالنی؟ ہم نے یہ پچھلی دفعہ دیکھا تھا نا، کون سے کلمات ہیں جو ہم نے نہیں بولنے. آج ہم دیکھیں گے کون سے کلمات ہیں جو بولنے ہیں. ٹھیک ہے، اب کچھ تو پتہ چل گیا، یہ نہیں کیا نا، ہائے ہمارے پاس ہوتے تو نہ جاتے، ہائے ایسے ہو جاتا تو ایسے ہوتا، اگر یہ ہوتا تو وہ، اگر وہ ہوتا. اور آپ کو میں نے بتایا تھا ایک کلمہ جو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. آپ نے یاد کیا، قدر اللہ ما شاء فعل. یہ آپ کو یاد کرنا ہے، اور صرف یاد نہیں کرنا، کہنا بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی یاد کرانا. پھر ہم نے دیکھا نرمی میں کتنی خیر ہے نا. اگر یہ رحمت نہ ہوتی، اگر سختی اچھی چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو سختی دیتا، لیکن نرمی اچھی چیز ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو نرمی عطا فرمائی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ بھاگ جاتے، اگر آپ سخت ہوتے، تو ہمارے جیسے لوگوں کے پاس تو اولی طور پہ بھاگ جائیں گے اگر ہم نے سختیاں شروع کی تو. اور ہم نے مشورے کی اہمیت بھی دیکھی، بہت سارے پیارے سبق ہمیں ملتے ہیں. اللہ پہ توکل کی بات دیکھی، ہم نے غل کو دیکھا، بے خیانت کیا ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسی ٹریننگ کر رہے ہیں نا. یہ خیانت نہیں کرنی ہے، خیانت کر کے کوئی لڑتے بھی جنگ کے میدان میں بھی دنیا سے چلا گیا تو وہ بھی اس خیانت کی بھی چیز کو لے کر آئے گا. پھر ہم نے رسالت کے مقاصد دیکھے، اور اگر رسول آئے اس مقصد کے لیے تھے تو پھر ہم نے اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا، ان کی کسی بھی اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا جو انہوں نے سکھائی ہیں، جن چیزوں کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا دنیا میں، تو پھر ان کی رسالت سے ہم نے کیا حصہ لیا؟ وہ تو کتاب کی تعلیم دینے آئے تھے، ہے نا، کتاب کوئی سکھانے آئے تھے، کتاب کوئی پڑھانے آئے تھے. اور ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، لکھنی یا تو لکھ لیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو نا قول ثقیلا کہا ہے. قول ثقیل، ابھی ثقیل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، بھاری ہے، بڑا بھاری بات ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جب وحی اترتی تھی तो ऐसे लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकल जाएगी, जैसे इतना प्रेशर होता था इस वही का। तो ये हमारे तक तो बगैर ही किसी उसके पहुंच गई, कोई हमें ऐसा प्रेशर नहीं उठाना पड़ा। मगर हाँ, इसको सीखना, इसको समझना, उसमें जो एफर्ट लगती है वो है, और उसको भी हम ना बर्दाश्त करना चाहें तो ये तो फिर बड़ी बदकिस्मती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अपनी यानी जान हलकान करके इसको अपने ऊपर लिया था। तो ये है कौले सकील, ठीक है। और कयामत का दिन क्या है? ये वो भी योमे सकील है, वो भी भारी दिन, बड़ा सख्त मुश्किल दिन। तो एक बड़ी प्यारी बात उलमा कहते हैं जो कौले सकील है ना, वो ही योमे सकील में बचाएगा, ठीक है। उस भारी दिन के लिए ये भारी कलाम ही है जो काम आ सकेगा और उस दिन बचा सकेगा। तो देख लें, रसूल आई किताब की तिलावत के लिए, इसकी तालीम के लिए, इसके जरिए तज़किया करने के लिए, और हम इसी किताब से ही दूर अगर हो गए तो, हमने इसी किताब को ना सीखा तो, इसी को ना समझ पाए सारी जिंदगी, तो क्या हिस्सा हमने लिया रसूल की रिसालत से? क्या वो तो ये फायदा देने के लिए हमें आए थे, हमने वो फायदा ही ना लिया। फिर कितनी प्यारी अल्लाह ताला ने तसल्लियां भी दी हैं कि फिक्र ना करो, अगर तुम्हें कोई मुश्किल पहुंची, उनको भी तो पहुंची है। और मौत से भागने का फायदा नहीं, जहां पे भी होगे वहां आके वो तुम्हें पकड़ लेगी, ठीक है। बड़े खूबसूरत सबक हैं। मैं कहती हूँ कि एक एक आयत जो है ना, आप लोगों को शायद लगता होगा ये इतना टाइम लगा देती है एक आयत पे, ये मैं क्या करूँ, ये आयतों का हक नहीं अदा हो पाता। अगर हम एक सबक में एक आयत भी ले लें ना, तो वो भी कम है, वो भी कम है। ये इतना ज्यादा इसकी तफसीर हो सकती है, इतनी किताबें मुफस्सिरीन ने, जितनी मैं तफसीरें उठाती हूँ, हर तरह से कैसे कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो अब आप तक पहुँचाने के लिए माजरत है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाज़ आयतें मैं कोशिश करती हूँ मैं जल्दी उससे गुजर जाऊँ, क्योंकि हर आयत पे हम बहुत टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हर आयत ही मोती है, हर आयत ही इतनी खूबसूरत है, हीरे जवाहरात हैं ये। इनके ऊपर कभी इस तरह से दिल को मलाल ना किया करें कि इतना लंबा, इतना इस आयत की तो तफसीर इतनी लंबी कर दी इन्होंने। अब वो उसका तकाजा ही ऐसा होता है, उस फिर मैं गुजर तो सकती हूँ आराम से, जल्दी से गुजर जाऊं, लेकिन बात नहीं बनेगी, फिर हक नहीं अदा हो पाएगा, और हक तो अभी भी अदा नहीं हो पाता। तो इसके लिए आपसे मैं पहले से ही माजरत कर देती हूँ कि इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करें, मेरी मजबूरी समझे, अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाती, तो वो मैं आप लोगों को बस कहती हूँ, सारा इनको दे दूँ मैं किसी तरह, इनको इनके अंदर उंडेल दूँ, बस इनको समझा दूँ मैं किसी तरह। और वो कई चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ से मुतल्लिक होती हैं, अब मैं उनके ऊपर आगे आगे चलती जाऊँ तो फिर क्या फ़ायदा ना, फिर आप उन पर प्रैक्टिस ही ना कर सके तो क्या उन आयतों का आपके लिए, तो बस यही होंगी, हाँ भाई ओवध के अंदर हुआ था, चलते चले जाओ आगे, ठीक है। तो ये उसके अंदर कुछ वजह होती है कि मैं कुछ आयतों को लेके ही बैठ जाती हूँ, तो इस पे ना आप दिल ना बुरा किया करें। तो आगे हम चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इसकी बैकग्राउंड बता दूं, जो हम अभी पढ़ने लगे हैं। आप देखें कि जब ओहद के उस पे आते हैं फिर दोबारा, और फिर उसको ज़रा अपने जहन में लेकर आए, कि जब जो मुशरिकीन थे वो लौटे, तो रास्ते में सोचने लगे, ना तो हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल किया, ना मुसलमानों की औरतों को हमने पकड़ा, तो फिर हमने किया क्या है, ये किस किस्म की हमारी जीत है, तो चलो वापस। जब ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फौरी हुक्म दिया कि बस तैयार हो जाए, निकलना है और काफिरों के पीछा करना है हमने। अब अंदाजा कीजिए, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मदीना की ना छोटी सी बस्ती थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, कितनी थी मदीना की बस्ती, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, अगर आपने देखनी हो कि मदीना कितना बड़ा था, तो जितने आज मस्जिद नबवी है ना, उतना मदीना था पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये जन्नतुल बकी जो है आप देखते हैं, ये तो बाहर थी ना, कब्रिस्तान तो बाहर बनाया गया था, तो ये टोटल था ये। अब कितने घर होंगे इसके अंदर, और उनमें 70 शहीद हो गए, और वो एक दूसरे के रिश्तेदार ही तो हैं, किसी का कोई बाप है, किसी का कोई भाई है, किसी का कोई बहनोई है, किसी का कोई दामाद है, किसी का कोई कुछ है, हर एक की कोई रिश्तेदारियां थी। घर घर सफे मातम बिछी हुई थी, लोग गम में थे। फिर आपको मैंने बताया कुरान में आया, गम पे गम उन पे टूटा था। जो बच के भी आए हैं वो तो ठीक है, जिस्मानी तौर पे तो जख्म थे ही, दिल कैसे चूर चूर थे उनके, पर किस वजह से ये जो सारा हुआ था, ये वो उससे ट्रॉमेटाइज्ड थे। अब खुद सोचें, एक एक बच्चा ये मसलन एक इम्तिहान देता है, इम्तिहान तो छोटी चीज है, जंग तो बहुत बड़ी बात है, एक इम्तिहान देता है, उसमें करते करते एंड में आके उसने कुछ गलती कर दी, उससे फेल हो गया, बस एक नंबर सही रह गया वो, मतलब सिर्फ एक बात रह गई थी उसने अपनी, उसमें किसी आके अपने जेहन में उसके कोई बात ऐसी आई कि उसने उस सवाल को आता था, उसको आता आता गलत कर दिया। अब उसके बाद उसका रिग्रेट आप सोचेंगे कितना होता है, उसके ऊपर कितना मलाल होता है कि हुआ क्या। अब इनको ये नहीं थी कि शिकस्त हुई थी, फतह मिलने के बाद और फतह देखने के बाद शिकस्त हो जाना और काफरों का ऐसे टूट पड़ना और फिर इतनी शहादतें हो जाना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात की अफवाह उड़ गई थी कि वो शहीद हो गए, उसका जो सदमा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी लिया तो आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, आपके चेहरे के ऊपर जख्म आए हुए हैं, अपने साथी जख्मी हुए पड़े हैं, लाशों का मुसला हुआ पड़ा है, जो प्यारे थे अपने उनको देखना आसान है। आप एक बंदे की भी डेथ देखते हैं ना, कई दिन इंसान के जहन पे असर रहता है। और ये कहाँ मैदान है उहद में, मुसला हुए भी कहीं कान काटे हुए हैं, कहीं नाके काटे हुए हैं, कहीं कहीं तो हिंद ने तो हार बना लिया था, अल्लाह ताला माफ फरमाए, उसने हार बना लिया था इन आज़ा का, और वो पहना था, तो ये आसान था कोई देखना, ये आसान था उनको दफन करना, ये एक जनाजा नहीं था, इतने जनाजे थे। तो ऐसे वक्त के अंदर आप सोचें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि चलो उठो अब चले, आप तो सिर्फ उस सिचुएशन को अपने जहन के अंदर लेकर आए, फिर ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो वक्त कितना मुश्किल होगा मुसलमानों के लिए। अब ये टाइम है कि आराम करें, कुछ थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा अपने जहन को वापस ठिकाने लेकर आए, थोड़ा इस गम से तो निकले, एकदम अभी आए हैं, अभी 15 शव्वाल को ये हफ्ते के दिन ओहद की लड़ाई हुई थी, और 16th को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं चलो, एक दिन गुजरा है सिर्फ, अभी जख्म ताजा है, ये तो जख्म भरने में भी बड़ा अरसा लग जाता है किसी प्यारे के जाने का। तो अगले दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कि वो दिल कैसे होंगे और वो हालात कैसे होंगे, उनको यहां डिस्क्राइब किया जा रहा है। लेकिन शान है उन लोगों की भी, सुभान अल्लाह, कि वो भी उठ खड़े हुए, चल पड़े, उनकी तारीफ अल्लाह ताला ने यहाँ पे की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ऐसा ईमान अता फरमा, ऐसा ईमान अता फरमा कि देखो कैसे शिकस्ता दिल हैं, कैसे हिम्मतें जवाब दी हुई हैं, जिस्मानी भी कमजोरी है जाहिर है, जख्म आए में है, हमें तो थकावट इतनी सी हो जाए ना, वो छोड़े आप कोई बड़ा काम तो छोड़े, हम किसी पिकनिक या दावत से ही आ जाए ना, आए ऐसे करके हम लेट जाते हैं, आए थक गए बड़े, वहां पे क्या किया हमने, क्या काम करके आए, कुछ भी नहीं, आए नमाज पढ़नी भी मुश्किल हो गई, मैं तो थक ही इतनी गई, गाड़ी में गए वहां इंजॉय किया, वापस आए तो तब भी हमारी थकावट ने देखे, सुबह फजर पे उठा नहीं जा रहा, थक बड़ा गए हैं, रात मजा जो करके आए हैं, गपशप जो करके आए हैं, तो हम तो मजे करके भी इतना थक जाते हैं कि हम नमाजें ही छोड़ देते हैं, और वो देखो हम थोड़ा सा काम करके ना, और उसके बाद हमें कोई कह देना कि अब ये थोड़ा और है जो आप करते हैं, आए हम तो इतना थक गए, हम तो पहले ही एक टेस्ट दिया, अब एक और टेस्ट आ गया, हम तो अभी असाइनमेंट करके बैठे हैं, अब ये भी टेस्ट देने शुरू हो जाए, हमारे तो ये हाल है, जरा सी भी हमें थकन हो जाए ना तो हम दूसरा काम करने को तैयार नहीं होते, चाहे वो अल्लाह के रास्ते का कोई काम हो, नहीं हमसे नहीं होता भाई, बड़े थक गए हम। और इमेजिन करें इन लोगों को, क्या उनको थकावट नहीं हुई होगी, आराम करके तो नहीं आए वो वहां से? दिल कैसे हैं? और जो ना गम होता है ना, वो वैसे इंसान को बड़ा थका देता। जो परेशानी होती है, जो गम होते हैं, इंसान फिजिकली कुछ भी ना करे, जो गम होता है वो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ता। इतना इंसान के ऊपर ऐसे उसके आसाब भी और उसको जिस्मानी तौर पे भी शल करके रख देता। इसीलिए ज्यादा गम तारी रखना 3 दिन से ऊपर क्यों मना किया गया? या इसके पीछे बड़ी हिकमत है, क्योंकि जब इंसान प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसी फेज में अगर रहता है ना, तो वो किसी काम के काबिल नहीं रहता। अल्लाह के काम क्या, वो तो अपने इन कामों के काबिल नहीं रहता, वो तो बीमार हो जाता है, बिस्तर में पड़ जाता है। फिर तो अल्लाह ताला ने उभारा है कि निकलो इसमें से, 3 दिन के बाद कुछ नहीं है सोग, नॉर्मल लाइफ की तरफ आओ और कहो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिकमतें हैं इसके पीछे, मगर इनको तो 3 दिन भी नहीं हुए थे। हम तो महीनों क्या साल हा साल ही करते रहते हैं, ईदें नहीं मनानी, अगले साल भी बरसियां करनी है, वो दिन दोबारा जब आएगा उसके ऊपर हमने गम मनाना है, तो वो महीने में हमने गम मनाना है। हमारे तो गम नहीं खत्म होते, तो काम क्या करेंगे? वी डोंट मूव ऑन विद लाइफ, हम वो जाने वालों के गम भी करते रहते। तो ये इस्लाम के तरीके नहीं है। आप देखें अल्लाह ने उनकी तारीफ किस बात पे की है, सुभान अल्लाह, वाकई फिर वो तारीफ के काबिल थे। और हम फिर अपने आप को भी देखें कि हमारे ऊपर अल्लाह ना करे कोई कोई मुश्किल आती है, कोई गम आता है, या कोई परेशानी आती है, या हम थक ही जाते हैं। चलो हमारे तो छोटी छोटी बातें ही हमारे लिए बड़े बड़े इम्तिहान बन जाती हैं, तो थोड़ा सा थक ही जाते हैं, तो फिर हमारे रवैये क्या होते हैं? अब देखें इनके लिए, अल्लदीन इस्तजाबू लिल्लाही व रसूली, वो लोग जिन्होंने लबैक कही अल्लाह के लिए और रसूल के लिए। रसूल ने कहा चलो अल्लाह का हुक्म आया, निकलना है हमने, उन्होंने कहा लबैक, हम हाजिर हैं, हम पीछे हैं। उन्होंने कबूल किया, मिम बादी मा असाबहुमुल करहु, इसके बाद कि उनको तो अभी जख्म पहुंचा था, अभी अभी तो उनके ऊपर इतना बड़ा घाव लगा था। जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लिल्लदीन अहसनू मिनहुम वत्तकौ अजरुन अजीम, ये हैं वो लोग जिनके लिए, जिन्होंने नेकी की और तकवा की रविश इख्तियार की, बड़ा अजर। कितनी बड़ी खुशखबरी फिर अल्लाह ताला ने दी। देखें मैं और आप ना, मैं आपको नहीं कहती सिर्फ, जब भी है मैं अपने आप को भी कहती हूँ, मैं कोई एग्जाम्प्टेड नहीं हूँ। मैं और आप ना अजर बहुत बड़े बड़े चाहते हैं, बड़ा दिल करता है हमें ये अजर मिल जाए, हमें जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, उससे कम पे तो हमें राजी नहीं, हमें बस ऐसे मिल जाए, ऐसे हो जाए, ये हो जाए। लेकिन जब आते एफर्ट करने की बात, जब आती है कुछ कुर्बानी देने की बात, जब आती है मेहनतें करने की बात, जब आती है अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर खड़े हो जाने की बात, तो फिर हमारा कोई हौसला ही नहीं पड़ता। फिर छोटी छोटी बातें ही हमें रोक लेती, फिर छोटी छोटी ख्वाहिशात ही हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाती, फिर हम छोटे छोटे थकने पे ही हम बस पड़े रहते हैं और उठते नहीं। छोटे छोटे मसाइल ही होते हैं जो हमें इस तरह दिल शिकस्ता कर देते हैं कि हम कहते हैं हमसे नहीं होता, मैं तो आजकल इस डिप्रेशन में हूँ। फिर देखिए हम किसी काम के काबिल ही नहीं रहते। तो ये नहीं, अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है, अल्लाह ताला के यहाँ बड़े अजर हैं उन लोगों के लिए। या उनके ऊपर कोई मुसीबत आती भी है ना, तो उसके बाद फिर खड़े हो जाते हौसला करके, वो पहाड़ी ही नहीं जाते, वो फिर खड़े होते हैं, फिर उस रविश को पे चलने लगते हैं, नेकी की, एहसान की। बेस्ट एहसान हो, सिर्फ नेकी नहीं, एहसान हो, एहसान के लेवल पे। और मेन होम ये नहीं है कि उनमें से, ये तबीजिया नहीं है कि वो सारे नहीं, उनमें से कुछ को अल्लाह ने देना है, नहीं, ये बयानिया है। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने नेकी इख्तियार की और तकवा की रविश इख्तियार की, उनके लिए बड़ा अजर है। आप इसकी मिसाल आप देखें, इससे आपको पता चलेगा कि वो किस हालात में निकले थे। ये वाक्य आता है कि कबीला बनू अब्दुल अशल की एक सहाबी का बयान है कि ओहद में मैं और मेरा भाई दोनों शामिल थे और हम सख्त जख्मी हो चुके थे जब हम लौटे थे। तो जब अल्लाह के रसूल के मुनादी ने दुश्मन के पीछे जाने की निदा दी, उसने कॉल दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, निकलो सब, तो हम दोनों भाइयों ने आपस में कहा, अफसोस है ना हमारे पास सवारी है कि हम उस पे सवार होके अल्लाह के नबी के साथ जाएं, ना जख्मों के मारे हमारे जिस्म में इतनी जान है कि हम पैदल ही साथ हो जाएं, अफसोस है ये गजवा हमारे हाथ से निकल जाएगा। कैसे हो सकता है कि यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना जाएं, ये गजवा हमारे साथ से निकल जाए, अब सवारी भी नहीं और जिस्म में भी नहीं जान नहीं, हमारे बेशुमार गहरे जख्म हमें आज जाने से रोक देंगे। लेकिन फिर हमने हिम्मत बांधी। देखो जब इंसान हिम्मत करता है ना तो अल्लाह भी उसका साथ देता है, फिर उसको खड़ा कर ही देता है। बात होती है एक दफा हमारा कदम बढ़ाने की, ठीक है, बात होती है एक दफा हमारा स्टेप लेने की, फिर देखो अल्लाह कैसे थामता है, फिर अल्लाह छोड़ता नहीं है। अब आप ना जिस कभी आप इसको आजमा के देखिएगा, जब आपकी हिम्मत नहीं हो रही, आप कह रहे हैं नहीं मेरे से नहीं होता, लेकिन आप कहते नहीं मैंने करना ही है, मैंने हिम्मत करनी है, और आप करने के लिए बैठ जाते हैं ना कोई काम जो भी है, आप उस करने के लिए खड़े हो जाते, तो आप देखेंगे अल्लाह करवा भी देता, अल्लाह करवा देता, और आप फिर सोचते हैं कैसे हो गया। तो कहते हैं हमने हिम्मत बांधी, कहते हैं मुझे मेरे भाई की नस्बत जरा हल्के जख्म थे, और मेरा भाई जो था वो बिल्कुल ज्यादा जख्मी था, तो जब मेरे भाई बिल्कुल चलने से आजिज आ जाता ना, मतलब जाहिर है चल के जा रहे हैं बेचारों के पास सवारियां भी नहीं, तो वो अब जख्मों से चूर हैं, जैसे जैसे गिरते पड़ते जा रहे हैं, वो कदम ना उसका उठता तो मैं जूं तू करके उसको उठा लेता, जब थक जाता तो मैं उसको उतार देता। हम वो कह सकते थे इतनी भी क्या मुसीबत है भाई, वो जो जाने वाले हैं जो ठीक है वो चले जाए, हमने लड़ना भी किया जाके, हमारे को हालात है लड़ने के, हम तो अपने आप को संभाल लें तो बड़ी बात है। लेकिन सुभान अल्लाह मैं कहती हूँ वाकई अजरे अजीम पाने के वो काबिल थे। जब इंसान प्रूव करे तो अजरे अजीम पाता है। यू नेवर प्रूव, यू हैव टू प्रूव टू अल्लाह सुभान तआला कि अल्लाह मैं इस काबिल हूं कि तेरे से अजर पाऊं। कोई करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ बातें बातें बातें, किस बात की फिर हम अजरे अजीम की तवक्कोआत रखते हैं। जरा सा हमें काम ज्यादा करने को पड़ जाए फिर देखें हमारी जान की मुसीबत, कि सारा कोसने इस चीज को ही देते हैं, हम क्यों आ गए क्लास में, हमने क्यों ले लिया ये कोर्स, और छोड़ो जी हम सारे हम क्यों उस मुसीबत में पड़ गए, सारी दुनिया ऐश कर रही है, देखो हम पता नहीं अपने आप पे ये क्यों लेके बैठ गए, मैं तो थक ही इतना जाती हूँ, मेरा तो ये हो जाता है, मेरे तो काम रह जाते हैं, मेरे तो फलाना हो जाता है, मेरे तो घर वाले बोलते हैं, मेरे तो मेरे से सुनी नहीं जाती बातें, अब मैंने नहीं करना, कितनी हमारी बातें, कुछ करने को तैयार नहीं है बच्चों, जरा सी हमारे पर आ जाए मुश्किल, जरा सी थकान कहाँ हमारे इन मिजाजों को कहाँ गवा रहा है, इतने हम सहल हैं और इतने हम आसानियां चाहने वाले लोग हैं, और फिर चाहते हैं अजरे अजीम भी मिले। आप देखें तो वो कहते हैं उनको उठा लेते थे, अब खुद भी जख्मी है भाई को उठाया भाई, फिर खुद थक जाते थे फिर उसको रख देते, कहते हैं इस तरह जूं तू करके कैसे तैसे हम वो लश्कर गाह तक पहुंच गए, अब मुसलमानों को जाके मिल गए। तो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, ये थे वो लोग। और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हजरत उर्वा बिन जुबैर जो उनके भांजे, उनसे कहने लगी कि ऐ भांजे तेरे दोनों बाप इन्हीं लोगों में से हैं जिनके बारे में ये आयत उतरी, यानी उनके बाप हजरत जुबैर अजरा मुबशरा में से हैं, जुबैर बिन अवाम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, वो भी बाप ही हुए ना नाना जो, ठीक है, तो और जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद भी देखें कितने जख्म आए थे, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी निकले। तो अल्लाह ताला ने उनकी यहाँ पे रिवॉर्ड को मेंशन किया है और उनकी यहाँ पे हिम्मत की दाद दी है, उनकी तारीफ फरमाई है। तो कब कब ऐसा होता है कि ना मसाद हालात हों, हालात सूटेबल नहीं है, हिम्मतें जवाब दे चुकी हैं, कोई गम है कोई परेशानी है, फिर भी इंसान लब्बई कहे, फिर भी इंसान अल्लाह के हुक्म को ना ना करे, तो ये है फिर उसके लिए रिवॉर्ड, ठीक है। तो ये समझ लें कि एक मुसलमान जब निकले हैं तो गए हमराउल असद तक, जो उनका लश्कर था अबू सुफियान का,
अब वो सोच ही रहे हैं या कुछ वहां पे बैठे हैं उसके डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल खड़े हुए। तो हुआ ये कि उनके दिल में अल्लाह ताला ने ऐसा रोब डाल दिया, और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजजा था जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा रोब अल्लाह ताला ने महीने भर की मसाफत तक दुश्मन के दिल में डाल देता है। तो इतना उनके दिल में रोब आया ना मुसलमानों का, कि वो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो चलते ही हैं, वापस चलते हैं हम, ये उन्होंने इरादा तर्क कर दिया। तो जब तक मुसलमान हमराउल असद पहुंचे तो वो जा चुके थे। तो ये गजवा हमराउल असद भी कहलाता है। बाज आप तफसीरों में ये देखेंगे कि लिखा हुआ है कि ये असल में बदरे सुगरा के बारे में है, यानी जो अबू सुफियान ने कहा था ना कि नेक्स्ट ईयर हम आके अब लड़ेंगे इसी जगह, तो वो नेक्स्ट ईयर फिर वो लोग आए और वो तो नहीं चले थे मुसलमान, जाके वहां पे पहले बैठ गए, और अब काफरों को जब इत्तला मिली तो वो भी चारों नाचा चल ही पड़े। तो उसको गजवा बदरे सुगरा भी कहते हैं और गजवा सुवैक भी कहते हैं, यानी उसमें सत्तू थे, वो सत्तू लेके निकले थे, मगर एक जगह रास्ते में ही पड़ाव डाला, फिर वहीं से वापस चले गए थे। लेकिन ये ज्यादा सही नहीं लगता, क्योंकि बदरे सुगरा जो था ना, फिर वो तो 1 साल गुजर चुका था। ये ज्यादा यही लगता है कि ये गजवा हमराउल असद के बारे में ही है, कि जिसके अंदर के उसी वक्त फिर मुसलमानों को कहा गया और वो जख्मों के बावजूद निकले। ठीक है, और इस दौरान में ये भी हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनू खुजा का सरदार माबद, वो वहां से गुजर रहे थे। अब ये बनू खुजा जो था ना, वो मुसलमानों का हलीफ कबीला था, मुसलमानों के बड़े हमदर्द थे ये, हालांकि काफिर ही थे लेकिन मुसलमानों के साथ बड़ी अच्छे ताल्लुकात रखते थे। तो वो जब उसको पता चला तो वो उसने बड़ा कहा कि हमें बड़ा रंज हुआ है, बड़ी हमें तकलीफ हुई कि आप लोगों के साथ ये हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि तुम जाके उनको उनको बताओ जो काफिर हैं उनके अंदर ये बात बताओ कि मुसलमान इस तरह से आ रहे हैं, और उनको थोड़ा मुसलमानों से यानी एक तरह से खौफजदा करूं। तो जब वो इसी तरह गया माबद फजाई, तो उसने जाके फिर अबू सुफियान ने पड़ाव डाला हुआ था तो उसने जाके कहा, आगे आगे वो पहुंच गया, उसने जाके अबू सुफियान ने पूछा कि भाई क्या हालात हैं, क्या खबरें हैं। अब उस जमाने में तो खबरें इसी तरह लोगों से ली जाती थी ना, कोई काफला गुजर रहा है कोई कोई, वो अभी वो मशवरे कर ही रहे थे कि हमने करना क्या है जो काफिर थे। तो जब ये माबद खजाई वहां पहुंचा तो अबू सुफियान ने इसे पूछा, तो उसने कहा कि वो तो बड़ी जमात लेके तुम्हारे ताकुब में आ रहे हैं, और वो लोग बड़े गुस्से में हैं, जो पहले लड़ाई में शरीक नहीं हुए थे वो भी शामिल हो गए, और सब के तेवर बदले में हैं, और वो भरपूर ताकत के साथ हमला आवर होने लगे, मैंने तो ऐसा लश्कर कभी नहीं देखा। ये सुन के अबू सुफियान के तो हाथों में तोते उड़ गए, वो कहने लगा अच्छा ही हुआ तुम मेरे मुझे मिल गए, और वरना हम तो खुद इनकी तरफ जाने के लिए तैयार बैठे थे। उसने कहा हरगिज ना ये इरादा करना, मेरी बात का क्या है अभी, बल्कि तुम्हें थोड़े तुम यहां से निकलने से पहले ही तुम उनके घोड़ों को देख लोगे, और खैर इसी में है कि तुम यहां से निकलो, क्योंकि उनके लश्कर बहुत गुस्से के साथ और बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं, बड़े अजम के साथ आ रहे हैं, जान बचाओ अपनी, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं जिससे मैं बता सकूं तुम्हें कि मुसलमान का हाल क्या है वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनके तो बड़े छक्के छूट गए, उन्होंने कहा कि भाई यहां से निकलो, तो वो फौरन मक्के की राह ली उन्होंने, और जाते जाते उसने क्या किया अबू सुफियान ने, कि एक काफला गुजर रहा था, कबीला अब्दुल कैस के आदमी थे वो, मदीना जा रहे थे कारोबार के घर से, उनसे अबू सुफियान ने कहा कि तुम मुसलमानों के लश्कर को पाओगे तो वहां पे एक खबर पहुंचा देना कि हमने तो उनको खत्म करने के लिए ना लश्कर जमा कर लिया और हम बस आ रहे हैं, अगर तुमने ये पैगाम पहुंचा दिया तो जो हमारा सूक लगता है ना, वो उनके बाजार लगते होते थे उकाज का, उसमें मैं तुम्हें बहुत सारी किशमिश दूंगा, तुम लोग ये मेरा काम करो। तो उन लोगों ने क्या किया, अब यहां से भी ये आदमी चल पड़ा, ये जो मैंने कहा कबीला अब्दुल कैस के जो आदमी थे, उन लोगों ने जाके मुसलमानों को नमक मिर्च लगा के और बड़ी ये बात बताई कि देखो अबू सुफियान तो आ रहा है और वो तो ऐसे और वो तो बस चल पड़ा है वहां से और वो तो ऐसे लश्कर ला रहा है और ऐसे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अभी मैंने आपको बताया माबद खजाई ने इनको आके कही थी। तो ऐसे में अब मुसलमानों का क्या हाल होता है? आप क्या सोचते होंगे क्या हाल हुआ होगा? हमारे जैसे कोई हो तो डर के मारे ही कहेंगे बस देखो क्या हमारे साथ हो गया है, हम तो आ ही क्यों गए। लेकिन वहां पे उनका हाल देखें, हर हर सिचुएशन में ना अपने आप को रखा करें जरूर। इसीलिए मैं आपको इतनी डिटेल बताती हूँ कि उस सिचुएशन को आप ऐसे महसूस कर सकें जैसे आपके सामने हो रही है, जैसे आप वहां हैं। और उसमें सोचा करें अगर मैं वहां पे होती तो मैं क्या करती, क्या करती मैं उस वक्त? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पे भी आज सिचुएशंस आएंगी जिसमें हमारे भी इम्तिहान होते हैं, इन्हीं जगहों से तो हम सीखते हैं कि हम क्या करते, साहबा ने क्या किया, और मैं होती तो मैं कहाँ खड़ी होती। अल्लदीन काला लहुमुन नासु, वो लोग के कहा उनसे लोगों ने, कौन से लोगों ने? यही वाले जो कबीला अब्दुल कैस के जो लोग थे, उन्होंने कहा इन नासा कद जमाऊ लकुम, लोग तो तुम्हारे लिए भाई जमा हो रहे हैं। लोग कौन? मतलब वो जो काफिर हैं वो तुम्हारे लिए जमा हो के आ रहे हैं। फख्शाउहुम, बस डरो उनसे, ओ भाई तो वो तो तुम्हारे बड़ा खराब भी कर देंगे, वो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, वो पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे भाई, ओ भाई वो तो आप लोगों की नंबर प्लेट नोट कर लेंगे, वो जी फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो जी FBI आ जाएगी, वो जी ऐसे हो जाएगा, वो जी एयरपोर्टों पे रोक लेंगे, वो देखो भाई आपके पास पता नहीं क्या हो जाएगा आपके ऊपर। ना ना ना, ये ना काम करना, तुम अगर क्लासें लोगे ना इनमें तो पता नहीं क्या हो जाना है, मस्जिद जाओगे ना तो पता नहीं क्या होगा, हिजाब ले लोगे ना नजरों में आ जाओगे, देखना फिर वो ये ना हो कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला ही कर दे तुम्हारे हिजाब देके। देखो ना ना ना, ये नाम ना रखना, मोहम्मद नाम ना रखो आजकल, ये उसका वक्त नहीं है, पहचान लीजिएगा, कोई ऐसा सा नाम रखो ना, कोई सैमी रख लो, कोई डैनी रख लो, कुछ ऐसा रखो पता भी ना चले। देखो ना इस तरह के नाम रखोगे तो नजरों में आ जाओगे, क्या करते हो आजकल, कोई वक्त है? और ये हिजाब लेने की क्या जरूरत है, अपने आप को खतरे में क्यों डालना, छोड़ो हिजाब को, और ये कुरान पढ़ोगे पता है तुम नजरों में कितने आ जाओगे। मतलब नोट कर रहे हैं वो, सब कुछ नोट कर रहे हैं भाई, वो ना हो गए को खुदा हो गए, अस्तग़फिरुल्लाह, उनको खुदा ही बना लिया, ये हमारी नकलो हरकत नोट हो रही है भाई। उनको भी ऐसे ही कहा था, आ रहा है वो अबू सुफियान का लश्कर, और ये इनकी हालतें सोचेंगे किस हालत के अंदर है ये, उसके आगे वो क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर फजादहुम ईमाना, अल्लाह हमारे भी ईमान ज्यादा हो जाए करे, उनका तो ईमान ही बढ़ गया। सुभान अल्लाह, वो आए कहने के लिए, वो कोई खुशखबरियां नहीं सुना रहे, कह रहे डर जाओ, और इनके ईमान बढ़ रहे, ये कैसे लोग हैं? और वो मुंह से क्या कहते हैं, हाय ये कहते हैं हाय अगर ना आते तो अच्छा ना होता, हाय अगर हम रह ही जाते, हाय हमारे पास तो छबला बहाना था, हम तो वैसे ही जख्मी थे, हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई थी, हम क्यों चल पड़े, वो छोड़ो जी ये सब, कोई जरूरत नहीं ऐसे इस्लाम की हमें। वो क्या कहते हैं, हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है। और वो कितना अच्छा कारसाज है, वो हमें किससे डरना, वो कंसंट्रेशन कैंप्स बना रहे हैं, वो जी अब आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू होने लगी है, वो जी अब ऐसे होने लगा है, नहीं हस्बुनल्लाहु व नियमल वकील, अल्लाह अकबर। ये थे वो कलिमात जो के सहाबा ने उस वक्त अपने मुंह से अदा फरमाए, हसबुनल्लाह व नेमल वकील, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से अदा फरमाए, वो ये वो कलिमा है को जो उनका ईमान बताता है कि उनका ईमान कितना था कि वो आगे से घबराए नहीं, फरमाया हसबुनल्लाह व नेमल वकील। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी चीज से खौफ करके ये कोई कलमा कहे तो अल्लाह ताला उस खौफ से उसको निजात दे देता है। हम कहें कि पता नहीं इलेक्शन होने, कौन सी हुकूमत आनी है, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, नहीं, हसबुन अल्लाह व नेमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी। और कारसाज कौन होता है, वकील कौन होता है, काम बनाने वाला। तो नेमल वकील बेहतरीन काम बनाने वाला, यानी हमारे एक तो ये ना इस सिचुएशन में तो आपने समझ लिया ना बात को। अब सोचे हमारे कोई काम है, कोई बिगड़ रहा है काम, कोई काम ऐसा है जो हमसे नहीं हो पा रहा कि हम इसको किस तरह से हैंडल करें, कोई बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की नौकरी का कोई मसला हो रहा है, किसी घर की कोई परेशानी हो रही है, कोई ऐसे औलाद के कोई मसाइल हैं, कोई जो नहीं हैंडल हो पा रहे, तो हसबुनल्लाह व नेमल वकील। काम बनाने वाला तो अल्लाह है, और वो बेहतरीन काम बनाने वाला मेरे से नहीं होता, अल्लाह मेरे लिए काफी है ना, वो करेगा, वो नेमल वकील है। और यही वो कलिमा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा, जो आखिरी कलिमा उनकी जुबान से निकला आग में पड़ते वक्त, वो था यही हसबी अल्लाह व नेमल वकील। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम पे कोई बहुत बड़ा काम आ पड़े ना तो ये पढ़ा करो, बड़ा काम आ जाए, कोई बड़ी मुश्किल आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए। इसी तरह एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं किस तरह बेफिक्र हो जाऊं, हम तो बड़े बेफिक्री की जिंदगी गुजारते ना, फिक्र है कोई नहीं, मजे करो, शॉपिंग करो, खेल कूद करो, सैरों करो, गपशप करो, मजा करो, जिंदगी फन है, इस तरह तो नहीं हम जिंदगी गुजार सकते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे, मैं बेफिक्र कैसे हो जाऊं, मैं कैसे फारिग होके आराम से बैठ जाऊं, हम तो आराम से ही नहीं उठते, हमारे आराम खत्म ही नहीं होते, अगर 1 घंटे का काम करते हैं तो 4 घंटे का आराम करते हैं, फिर वो फरमा रहे मैं आराम कैसे करूं, क्यों, क्या वजह है कि उन्हें आराम कर सकते, क्यों नहीं बेफिक्र हो सकते। फरमाया जो सूर फूंकने वाला है उसने सूर मुंह में ले रखा है, अल्लाह हू अकबर, कभी अल्लाह मैं कहती हूँ हमारे अंदर ये क्यों नहीं फिक्र है। हाँ ये फिक्रें जरूर हैं, अब नौकरी का क्या बनेगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या बनेगा, ये कहाँ से खाएंगे, इनके रिश्तों का क्या बनेगा, इनके घरों के हालात सही रहे हैं उसका क्या बनेगा, ये कैसे गुजारा करेंगे, हमारा इस मुल्क में क्या बनेगा, ये जरूर फिक्रें, मगर ये फिक्र कि सूर फूंकने वाले ने सूर को मुंह में लिया हुआ है और पेशानी झुकाए हुए है और अल्लाह के हुक्म का मुंतजर है कि कब अल्लाह ताला हुक्म दे दे, और वो सूर में फूंक दे, ना वो सोता है, ना वो खाता है, ना वो पीता है, ना वो ऊंघता है, ना कुछ नहीं, वो अलर्ट है और उसने अपने कान लगाए हुए अल्लाह के हुक्म पे, वो भी रिलैक्स होके बैठ जाए, अभी कौन सी, अभी थोड़ी होना है, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा, वो कितना अलर्ट है कि एक लम्हे की भी कहीं ताखीर ना हो, जू ही हुक्म आए मैं सूर फूंक दूं। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं और खैरुल बशर है, सैयदुल अंबिया है, और क्या फरमा रहे, मैं बेफिक्र कैसे हो जाऊं, मैं कैसे आराम करने बैठ जाऊं जबकि सूर फूंकने वाले ने सूर पकड़ा हुआ है, ऐसे अपनी पेशानी झुकाए हुए है, अल्लाह के हुक्म का मुंतजर है कि कब हुक्म और वो सूर फूंक दे। साहबा बड़े परेशान हो गए ना, फिर उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह फिर हम क्या पढ़ा करें, हम क्या पढ़े, फिर हम क्या कहा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही फरमाया कि कहा करो हसबुनल्लाह व निअमल वकील व अलल्लाहि तवक्कलना, हमारे लिए अल्लाह काफी, वो बेहतरीन काम बनाने वाला, उस पे हमने भरोसा किया, सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से भी हजरत जैनब ने बाद में पूछा था उनके ऊपर, जब तो जो तोहमत लगी थी कि जब तुम हजरत सुफान बिन मौतल की सवारी पे सवार होने लगी थी तो तुमने कुछ बोला था, कुछ कहा था, तो फरमाती हाँ मैंने कहा था हसबी अल्लाह व निमल वकील। देख लें फिर अल्लाह ताला ने भी कैसी उनकी बरात उतारी कुरान में, ये पाक है हाँ? ये कलमा बहुत बड़ा कलमा, मामूली बात नहीं है ये, तो आपको ना कुछ भी ना याद आए, कोई ऐसे अब डरा रहा है, या कोई ऐसे हिम्मत कम करा रहा है, खौफजदा कर रहा है, या आपको पर कोई मुश्किल मौका आ गया है, जैसे अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितनी मुश्किल चीज आ गई थी, कितनी मुश्किल बात थी, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए कितनी परेशानी की बात थी, तो उस वक्त क्या चीज है जो हमें हमने याद रखनी है। एक मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये चीजें नहीं बोलनी, अगर ऐसे होता तो ऐसे होता, ऐसे होता तो ऐसे, लेकिन उस वक्त परेशानी की बात हो क्या कहना, हस्बुनल्लाह व निमल वकील। ठीक है, तो मुसलमानों के तो ईमान बढ़ गया, इससे क्या पता चलता है, ईमान जो होता है वो बढ़ता भी है घटता भी है, इससे ये पता चला ना, ईमान बढ़ता ही होगा तो यहाँ पे कहा गया उनका ईमान और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उनको पता है कि ये अल्लाह के वादे हैं और ये अल्लाह ताला का वादा सच्चा होगा। क्या आजमाइशें आएंगी, इसी तरह सूरह आजाब में भी है ना कि वो जब पता चला इतना बड़ा लश्कर 10,000 का लेकर आ रहे हैं काफिर, अब इतनी छोटी सी मदीना की बस्ती है, ये सारे ही मिलके आ रहे हैं, क्या बनेगा? तो मुनाफिक तो थो वो, उन्होंने तो वो हशर मचाया, लो जी ये इनकी बातें देख लो सुन लो, बड़े बड़ी बातें करते थे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हम ये कर लेंगे, आज देखो खौफ का आलम ये था, बाथरूम तक जाना मुश्किल था, इतना खौफ था, तो कहते आज ये हालत हो गई है, बाथरूम तक जाना मुश्किल है, ये कहाँ की बातें कर रहे थे। उस वक्त भी आता है कि मुसलमानों ने उनके ईमान और बढ़ गए थे, उन्होंने कहा इसके तो वादे अल्लाह ने हमसे किए हैं कि आएंगे मुश्किल हालात भी, ये तो क्या हमने नहीं पढ़ लिया कि तुम्हें ऐसे ही जन्नत मिल जानी, अल्लाह ने अभी देखना नहीं तुम्हें सब्र करने वाले कौन है, क्या तुमने ऐसे ही देख लिया कि तुम ऐसे समझ लिया तुम जन्नत में चले जाओगे, अल्लाह ने अभी देखना नहीं है तुम में से मेहनत मुशक्कत अल्लाह के रास्ते में अपने आप को खपा देने वाले जिहाद करने वाले कौन है, तुमने ऐसे ही समझ लिया तुम जन्नत में चले जाओगे, अभी तो अल्लाह ने देखा ही नहीं है, वो जैसे हालात तुमसे पिछले पे गुजरे वैसे हालात तुम्हारे पर आए ही नहीं है अभी, तुमने ऐसे ही समझ लिया, तो अब इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर भी आएंगे हालात, तुम्हें भी आजमाया जाएगा, अल्लाह ने टेस्ट करना है, तो जब टेस्ट आता है तो उस वक्त अगर मगर ये ना होता वो ना होता ऐसे ना चलता वैसे ना, उस वक्त तो कहना चाहिए कि हाँ इसका तो वादा अल्लाह ने किया हुआ है, ये कोई अनोखी चीज तो नहीं, जब ईमान लेकर आए हैं तो ये तो इम्तिहान आने ही है, शुड बी रेडी फॉर दिस, तुम्हें ऐसी बातों से ही जन्नत में भेज दिया जाएगा, अब बातें बनाते रहो जितनी मर्जी करा लो बातें, उसका क्या है? जन्नत के हमें शौक है ईमान के लिए, दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह रसूल के लिए, हम तो जान देने को तैयार हैं, हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, वो ये बातें तो मुनाफिकीन भी बड़ी करते थे, फिर उसके बाद देख लो कि क्या निकला, और आगे बात आएगी अल्लाह ताला ने फिर अलग अलग करके छोड़ना, तो ये हसबुनल्लाह व निअमल वकील ये बहुत बड़ा कलमा है, बहुत बड़ा, देखो कितने बड़े बड़े लोगों ने कहा है, तो हम इसको छोटी बात ना समझे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है, और ईमान को हमने बढ़ाने के लिए कोशिशें करनी होती हैं, ईमान बढ़ता है, आप खुद नोट कर लेते होंगे कुरान पाक में भी है कि वो लोग जब कुरान सुनते हैं सूरह अनफाल में तो उनके ईमान बढ़ जाता है, ईमान बढ़ने का इसका मतलब कुरान के जरिए ईमान बढ़ता है, अगर आप कुरान से दूर हो जाते हैं ना, आप मसलन चले जाएं वेकेशन पे, जरा महीना आप रह के आते हैं घूम फिर के आते हैं, उसके बाद मुझे अपने ईमान का हाल बताएं क्या होता है, वहां पे आपने ना कोई क्लास ली ना कोई कोई आपने अल्लाह की बात सुनी ना कुछ है, क्या होता है, खुद आप सब बता सकते हैं इस बात को, आप अपने मुल्कों में घूमने फिरने जाते हैं, अच्छा आप घूमने फिरने छोड़ें आप बाजार ही ज्यादा जाना शुरू हो जाए, छोड़ दे इसके लिए हमारा टाइम नहीं है, आजकल शादी है घर के अंदर, बाजार जाना है, बाजार के चक्कर लगते जा रहे हैं, ईमान का लेवल थोड़े दिन में ही देखना क्या हो जाता है, आप इतने से अंदाजा लगा दे कि जुमे के दिन आपके ईमान का लेवल जब आप क्लास लेते हैं तो क्या होता है और अगले थर्सडे तक क्या हो जाता है, सोचिए ना, तो ये ईमान समझ लें ऐसे जैसे पौधा है, इसको मुसलसल पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है तो ये ग्रो करता है, इसको आप छोड़ नहीं सकते कि आप बस छोड़े रखे ईमान है तो पता नहीं खुद ही बढ़ता जाना है, खुद नहीं बढ़ेगा ये, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, हमने छोड़े रहते हैं वो मुरझाया पड़ा है हमारा ईमान, को परवाह ही नहीं है, और ये जो हम कहते हैं ना अरे वो नमाज नहीं पढ़ता फलाना ये नहीं करता मैं क्या करूं इतनी दफा कह दिया फलाना बात नहीं सुनता, वो ये बात नहीं है कि वो नमाज की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, पीछे वजह पता है क्या, ईमान कमजोर हो चुके, ईमान का पौधा मुरझाया पड़ा है, वो जब ताजा होगा ना तो फिर देखना वो खुद ही इस तरफ आएंगे,
तो प्रॉब्लम ईमान में होती है, तभी अमल में सुस्ती आती है। जिस दिन ईमान स्ट्रांग हो, और आप देखें फिर आप किस तरह फुर्ती से काम करते हैं, फिर परवाह नहीं होती थकावटों की, फिर परवाह नहीं होगी कि कितने घंटे से मैं बैठी हुई हूं ये काम कर रही। और जैसे जैसे ईमान कम होता जाएगा, इसका मतलब सबका ईमान एक लेवल का भी नहीं होता, हर एक ईमान मुख्तलिफ होते हैं। अब बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का ईमान कैसा था, उन्हीं में सहाबा कराम थे, दूसरे थे जिनका ईमान उनसे कम था, और हमारे ईमान तो क्या हालात हैं, और फिर भी हम कहते हैं हो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हमने पढ़ लिया, बहुत तुम्हारे लिए ज्यादा ये है। नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा रिमाइंडर्स की जरूरत है। हमारे तो ईमान के पौधे बहुत अरसे से खुश्क थे, इनको बहुत सींचने की जरूरत है, बहुत केयर की जरूरत है। और फिर जो फितने हैं, जो हवाएं बाहर चल रही हैं ना, वो तो इस पौधे को उखाड़ के फेंक देना चाहती हैं। वो आंधियां हैं आज के दौर में, वो तूफान है आज के दौर में, जो आपकी इस पौधे को नहीं चाहते कि ये जड़ें पकड़े, वो चाहते उखेड़ के फेंके। तब कितनी मेहनत करनी होगी इसको बचाने के लिए, हाँ? तब कितनी कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमारा ईमान मजबूत हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो। फिर अल्लाह वालों की सोबतें, नेक लोगों की सोबतें भी ईमान को बढ़ाती हैं। तो नेक लोग कौन होते? नेक लोग वो होते हैं जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, जिनके पास बैठ के आपको नेकी का शौक हो, गुनाहों से दिल उचाट हो, अल्लाह की याद आए, आखरत याद आए। उनकी सोबतें भी इंसान का ईमान बढ़ाती हैं। नेक माहौल, अच्छा माहौल, अच्छे दोस्त, सालेहीन की कंपनी, तो ये कुछ चीजें जो ईमान को बढ़ाने वाली हैं। इनको हमेशा हमने कोशिश करनी है हमारा ईमान बढ़े, और हमेशा ये सोच रखनी है कौन सी काम करूं कि मेरा ईमान बढ़ जाए। ईमान घटता बढ़ता है ना, कौन सा काम करूं कि ईमान बढ़े मेरा? ऐसे लेक्चर सुने, ऐसी बातें किसी की सुने, ऐसी किताबें पढ़ें कि ईमान बढ़े, ऐसे काम करें इबादत में बढ़े आगे, उससे और ईमान बढ़ेगा, इबादत और बढ़ेगी, फिर ईमान और बढ़ेगा, फिर इबादत और, तो दोनों एक दूसरे के साथ है। तो हसबुनल्लाह व नियमल वकील का पल्ले बांध लिया ना आपने, भूलना नहीं है, ठीक है? एक दूसरे को भी वतवासव बिल हक वतवासव बिल सब्र भी करते रहना है, एक दूसरे को भी बताते रहना, दूसरा भूल जाएगा, आपको याद आ जाए ना आप बता दिया करें। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा वो वहां पे जब गए, वहां पे उन्होंने पड़ाव डाल लिया मुसलमानों ने, और बैठे हैं वहां पे बैठे हैं। तो जब जितने देर वो वहां पे बैठे हुए, हम राउल असद में इंतजार कर रहे हैं कुरैश का, ठीक है, आए वो आए लड़ने के लिए, तो वहां से काफिला गुजरा। काफरों ने क्या आना था, वो तो वापिस ही पलट गए थे। वहां से काफिला गुजरा जिसके साथ मुसलमानों ने ट्रेडिंग की, और इतना फायदा उनको हुआ, इतना उनको नफा मिला, इतना प्रॉफिट उनको हुआ। अल्लाह ताला ने उसी बात को यहाँ पे बयान फरमाया कि जब वो हमराउल असद से वापस आए ना, फन कलाबू, तो वो पलट आए, वहां से पलटे मदीना की तरफ। किस तरह, किस चीज के साथ, क्या था उनके पास जब गए थे, तो क्या था? जख्मों से चूर, और ऐसे जब आ रहे हैं वापस तो क्या लेकर आ रहे हैं, ना लड़ाई भी ना कुछ, क्या लेकर आ रहे हैं? बी नियामत मिन अल्लाह, अल्लाह की नेमत के साथ। क्या थी अल्लाह की नेमत? सलामती, सलामती दुनिया की भी और आखरत की भी, यानी लड़ाई तो हुई नहीं, तो सलामती के साथ आ गए, किसी नुकसान के बगैर आ गए, आफियत के साथ आ गए। और सिर्फ यही नहीं, वफद्दलिन, और जायद भी, और फजल बड़ा अच्छा लगता है सबको, जब एक चीज होती तनख्वाह आपको मिलती है, एक बोनस मिलता है, वो बोनस फजल होता है, बोनस तनख्वाह से भी ज्यादा पसंद आता है। तो फजल क्या था? दुनिया और आखरत का फजल, कि अल्लाह इससे भी ऊपर अता फरमाए, जायद फजल, जायद को कहते हैं, जितना है उससे ऊपर, ऑन टॉप ऑफ इट। और वो क्या था? दुनिया का भी आखरत में तो अजरे अजीम, और दुनिया में देखे उनको कितना प्रॉफिट हुआ। लम यमसस हुम सू, सू ने तो उनको छुआ भी नहीं, बुराई ने, किसी नुकसान ने, किसी तकलीफ ने, कोई उनको तो तलवार भी उठानी नहीं पड़ी, जैसे गए थे वापस से वापस आ गए। तो जब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उनको अजर किस बात का मिल रहा? वो तो उन्होंने लड़ाई तो नहीं की थी,
क्यों मिल रहा है उनको अजर, ये बताएं। वो नीयतें, वो इरादे, वो एफर्ट जो उन्होंने दिखाई, वो लब्बैक जो उन्होंने कही। बाज दफा अल्लाह ने कराना कुछ नहीं होता, मगर अल्लाह देखता है कि ये बंदा कहता क्या है मुझे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटा कुर्बान थोड़ी कराना था, अल्लाह ने देखना था कि इब्राहिम जब मैं हुक्म दूं तो कहता क्या है। समझ आई बात? हाँ जी, जब अल्लाह का हुक्म आए तो क्या कहते हैं हम? ओ बड़ा मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल है, ये तो आज के वक्त में हो ही नहीं सकता। या कहते समय ना बताना, मैं बस उठ खड़ी हुई, मैंने कर लेना, बस अल्लाह की मदद से मैं करूंगी, ये कहते हैं। वो देखिए, उन्होंने ना एक भी नहीं तलवार चलाई, एक भी नहीं उन्होंने तीर चलाया, एक भी नहीं उन्होंने नेजा चलाया, अजर भी बड़े बड़े मिल रहे हैं। अब आप नहीं हैरान हो रहे किस बात में? ये वजह है। तो अल्लाह ताला किसी का रखता नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, वो घबराते क्यों? इतना अल्लाह के रास्ते में कुछ देने से ना, अपने आप को लगाने से भी इतना घबराते हैं जैसे पता नहीं हमारा कोई अल्लाह ने लेके हमसे कुछ रख लेना। वो तो रब्बुल आलमीन है। आप इंसानों को, अपने जैसे इंसानों को कोई तोहफा देते हो ना, वो चाहता है आपको इससे बढ़ के दे वापिस करके। आप किसी के साथ कोई अगर सलीमुल फितरत इंसान होता है ना, आप उसको 100 देते हैं, वो चाहता है मैं लौटाऊं तो 200 करके लौटाऊं। आप उसके साथ एक नेकी करते हैं, वो कहता है नहीं मैं, इसने मेरे साथ ये किया ना, डबल मैं इसको करके दूं। वो आप रब्बुल आलमीन से सौदा करते भी इतना डरते हो, ओ ये कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाना है, वो तो पता नहीं हमें ये ना हो जाए, वो किसी का रखता है भला? अगर आप नींद की भी कुर्बानी दोगे ना, उसने रखना नहीं है आपका। वो ना आपने नींद की कुर्बानी दे दी, उसको क्या फायदा? उसकी कायनात में कौन सा ऐसे बढ़ोतरी हो गई? इतना घबराते किस बात से हो? वो लगाते हुए इतना डरते क्यों हो? वो रख नहीं लेगा आपका, उसने पता नहीं कितने गुना करके आपको देना है कि आप गिन भी नहीं सकोगे। वो डर डर के अपनी चीजें बचा के ना रखो। आप वक्त लगाते हुए, ओ इतना वक्त इसमें लग गया तो फिर मेरे कामों को क्या होगा, वो बाकी काम कैसे करूंगी? वो किसके लिए लगा रही हो? अल्लाह के लिए। उसको देते हुए डरती हो? वो रख लेगा तुम्हारा वक्त? वो इसने इतनी बरकत डाल देनी है वक्त में कि वो जो आपने 2 घंटे उसके रास्ते में, 3 घंटे दे दिए ना, उसने बाकी 24 घंटों में इतनी बरकत डाल देनी है कि आप वो 4 दिन में नहीं काम कर सकेंगे जो उन 24 घंटों में आपका हो जाए। फिर भी हम थोड़े दिल है ना, असल में थोड़े दिल, छोटे छोटे दिल हैं, कैसे लगाएं? कोई पैसा भी निकालते हुए आई, क्योंकि मेरी तो अपनी इतनी जरूरियात है, कोई चीज अल्लाह के रास्ते में देते हुए हमें बस घबराहटें होने लगती। वो तो हम थक ना जाऊं कहीं, वो थक गई तो क्या हुआ? अल्लाह ने फिर पता नहीं कितने ऐशो आराम देने हैं, ऐसी जिंदगी देनी है जिसमें कभी कोई थकावट ही नहीं होगी। अगर यहाँ पे उसके लिए ना लगाया तो ये तो जिस्म वैसे भी कल तक क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं, अब कम ही होती जानी है। इसने तो वैसे ही घुल जाना है और एक दिन मिट्टी हो जाना। वो किसी उसको संभाल के रखना आपने, क्या क्या करने के लिए संभालना आपने? हाँ क्या इसको संभाल संभाल के रखती हो कि जो है ना भाई, वो इसको ना कोई तकलीफ हो जाए, हाय इसको ना मैं जगा दूं कहीं, इस जिस्म को ना कुछ हिलना पड़ जाए, इस जिस्म इस दिमाग को ना कोई कोई प्रेशर ना पड़ जाए इसके ऊपर, ये इसके कई याद करने पड़ जाएंगे, इसको बड़ा थक जाएगा ये। वो क्या करना इसको, ब्रेन को रख के कब्र में ना ये मट्टी हो जाना है, वो मट्टी होने से पहले इसको यूज कर लो। इन आंखों को संभाल संभाल के रखोगे, इस पे चश्मे लग ही जाने हैं। लगाओ अल्लाह के लिए, किस दिन के लिए रखा हुआ? तो मत संभाल संभाल के रखो, अल्लाह से मत चीजें छुपा छुपा के रखो, और कुछ नहीं ये काम आनी तुम्हारे, लगाओ अल्लाह के रास्ते में, कुछ नहीं हो जाता। और ये जिस्म किस दिन के लिए है? शॉपिंगों पे लगे, शादियों पे लगे, और भाग दौड़ों में इधर उधर जाने आने की सैर सपाटों में लगे, तो अब नहीं कोई परवाह, तब थकावटें करके भी हम खुश होते, इधर ना थकावट हो जाए तो फिर कहते हैं अजरे अजीम भी मिले हमें। अल्लाह अकबर। तो वो देखो, उनको किसी बुराई ने छुआ भी नहीं। अल्लाह को पता है ना, अल्लाह ऐसे नहीं किसी के ऊपर उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं बोझ डालता। अल्लाह को पता था उनके इस वक्त क्या हालात है, अल्लाह को पता था इनसे नहीं लड़ा जा सकता इस वक्त। अल्लाह ने कैसा कर दिया
लेकिन इम्तिहान एक दे के और वो उनके दर्जे बढ़ा दिए। बाज दफा इम्तिहान इंसानों के दर्जे ऊपर करने के लिए आते हैं और अल्लाह की रजा पाने के लिए आते हैं। इंसान अपने अमल से, अपनी इबादत से, अपनी नेकियों से नहीं वो मकाम पा सकता जो अल्लाह ताला ने उसके लिए जन्नत में रखा होता है। तो अल्लाह ने उसको जन्नत में ऊंचे मकाम देने का फैसला किया होता है, तो अब कैसे मिले? फिर अल्लाह कोई आजमाइश डाल देता है, आजमाइश डाल देता है, इंसान उस आजमाइश में सब्र करता है, हसबुन अल्लाह व निमल वकील कहता है, अल्लाह से राजी रहता है, तो अल्लाह ताला उसके बदले में फिर उसको वो ऊपर के ऊंचे मकाम दे देता है। सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ने उनको कांटा भी नहीं चुभने दिया, फरमाया लम यमसस हुम सू, कोई चीज रहा तकलीफ नहीं उनको पहुंची, कुछ नहीं उनको हुआ। वत्तबाहु रिदवान अल्लाह, बल्कि वो तो उन्होंने पैर भी की अल्लाह की रजा की, तो अल्लाह ताला ने उनको फजल भी दिया और नेमत भी दे के भेजा। उन्होंने अल्लाह की रजा को चाहा ना, उन्होंने वो करके दिखाया जो अल्लाह को राजी कर दे। तो उन्होंने अल्लाह की रजा पाना चाही जख्मों से चूर होने के बावजूद, तो अल्लाह ताला फिर राजी ऐसों से ही होता है। ये सबब बना अल्लाह की रजा पाने का। वो कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनसे अल्लाह की रजा मिल सकती है, और उनमें एक ये भी है कि जब अल्लाह का हुक्म आए तो इंसान चाहे हिम्मत ना भी हो, चाहे इंसान ताकत ना भी अपने अंदर समझे, फिर भी अल्लाह ताला के हुक्मों पे चलने के लिए अपने आप को आमादा करे, तैयार करे। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। और लोगों, कयामत तक के लिए समझ लो ये बात, अल्लाह बड़ा फजल वाला है, उसके फजल खत्म नहीं होगा कि उनको दे दिए तो अब नहीं। और तुमने भी भागना, दौड़ लगाओ इस मैदान में, हाँ तुम्हें भी फजल मिल सकता है, वो बड़ा ही अजीम फजल वाला है। तुम चाहते तुम्हें भी मिले फजल, तुम भी इनके नक्शे कदम पे चलो। फिर ये बातें इसीलिए हैं, ये स्टोरीज पढ़ने के लिए और फिर किताब बंद कर देने के लिए नहीं है। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतानु युख़व्विफ़ु औलियाहु, जो बेशक जो शैतान है ना, ये शैतान युख़व्विफ़ु डराता है किससे? अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों को नहीं, औलिया आहू अपने दोस्तों से डराता है। क्या मतलब? वो जो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ये अबू सुफियान ने भेजा उन लोगों को कि जाओ जाके कहो कि वो तो आ रहे हैं और ऐसे, और वो तुम्हें खत्म कर देंगे और ऐसे, और वो लोग आए। उन्होंने ये क्या, किसका काम था? ये असल में शैतानों के जो दोस्त होते हैं, शैतान अपने दोस्तों से डराता है ईमान वालों को। इसने काम क्या किया, जो अब्दुल कैस के जो कबीले के लोग थे, इन्होंने काम क्या किया? शैतान वाला काम किया कि ईमान वालों को डराया। किन से? उन काफरों से। तो शैतान का काम, ये इंसानों में से भी शैतान होते हैं, जिन्नों में से भी शैतान होते हैं। जिन जो शैतान इबलीस है, वो इंसानों के जरिए भी, अपने चेलों के जरिए, अपने एजेंट्स के जरिए ये काम कराता है। उसके इंसानों में भी एजेंट होते हैं, इसलिए तो मिनल जिन्नति वन नास कहा गया ना सूरह नास में, इंसानों में भी तो उसके चेले हैं, तो इनके जरिए वो काम कराता है अपने एजेंट्स के। अब यहाँ पे जो उन्होंने काम किया वो शैतानी काम था, वो काम शैतान वाला था, हालांकि किया तो इंसान ने था। तो इंसान भी शैतानी मिशन में शामिल हो जाते हैं। और शैतान का काम क्या होता है? वो अपने दोस्तों से डराता है। यानी कैसे? मतलब से डराना मतलब है कि ईमान वालों के दिल में खौफ पैदा करता है कि वो आ जाएंगे, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। वो किसके, वो कौन है? वो ये शैतान के दोस्त जो है, वो काफिर, वो मुनाफिक, वो और ऐसे लोग जो मुसलमानों के दुश्मन है। तो वो उनसे मुसलमानों को डराता है। क्यों डराता है? ताकि ये डर जाएं और अल्लाह के रास्ते को छोड़ दें, जब भाग जाएं। वो भी तो भागा ना अबू सुफियान देखे, कैसे भागा? ये फर्क होता है ईमान में और कुफर में। जो ईमान होता है ना वो डट जाता है, जो कुफर होता है वो भाग जाता है। हाँ जी, हम भी देखेंगे कि हम कैसे हैं। ईमान डटा रहता है, ईमान नहीं डरता। तो कहते हैं ना कि जो अल्लाह से डरता है वो कोई चीज़ फिर उसको डरा नहीं सकती।
और जो लोगों से डरता है तो फिर हर चीज ही उसको डराती है, जो अल्लाह से नहीं डरता फिर उसको हर चीज डराती है। अल्लाह से नहीं डरे फिर लोगों से डरने लगे, फिर चीजों से डरने लगे, फिर हालात से डरने लगे, फिर कोई तो कोई एंड ही नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह का जो डर नहीं। और जो सिर्फ एक अल्लाह से डरता है फिर कोई चीज को डरा ही नहीं सकती, क्या चीज डराएगी। देख लें आप, वो एक अल्लाह से डरने वाले थे, उनको भी तो आगे कहा ना, वो भी इसी तरह भाग सकते थे, ओहो आ रहा है लश्कर, हमसे तो पहले ही हमारे अंदर हिम्मतें नहीं, हमने क्या जाना, वो वहीं से भाग जाते, नहीं भागे। फर्क देखा है आपने दोनों में, दोनों का कंपैरिजन करें। तो जो शैतान था वो बदर में भी आया था और उसने आके काफरों के हौसले बुलंद किए थे। तो शैतान उस वक्त भी और आज तक भी और कयामत तक भी अपने इस मिशन पे लगा हुआ है कि उसने क्या करना होता है, ईमान वालों के दिल में खौफ डालना होता है काफरों का, जो उसके दोस्त हैं उनका, कि वो तुम्हारा नुकसान कर देंगे, वो तुम्हें बदनाम कर देंगे, देखो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे, देखो फिर वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, फिर देखो ये ना हो जाए, तुम्हें पकड़ के ना ले जाएं, तुम्हारे लिए ऐसे ना कर दें। तो वो जो कमजोर दिल होते हैं या जो मुनाफिक होते हैं वो भाग जाते हैं फिर, और कमजोर ईमान वाले जो होते हैं वो भी नहीं टिक सकते। इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युख़व्विफु औलियाहु, ये याद रखिएगा। अल्लाह ताला ने फिर इसका क्या जवाब दिया, फिर क्या करो तुम डर जाए करो, हाँ नहीं, फला तखाफून, उनसे मत डरना, वखाफूनी, मुझसे डरो, इन कुन तुम मुमिनीन, अगर वाकई तुम ईमान वाले, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो उनसे क्यों डरते हो, तुम फिर मुझसे डरो, अल्लाह ना नाराज हो जाए, अल्लाह को नहीं छोड़ना। आगे पीछे आया नहीं, हमने पढ़ा नहीं है, यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, क्यों डरते हो, अगर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हुई कोई तुम पे गालिब नहीं आ सकता। अरे ये ईमान हम लाए कहाँ से, हम पढ़ तो लेते हैं आयतें, कहाँ से ये ईमान आए कि जो इतना मजबूत हो, ये वाकई हम किसी के डरावे में ना आए। और उलट हिसाब है, हम तो इतनी छोटी छोटी चीजों पर डर जाते हैं कि हाय शैतान कहता है ये तुम्हारी दोस्ती है ना, ये तो तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुमने इस हाल हुलिये को अपनाने की कोशिश की, अगर तुम ये मुल्लानी बन गई ना तो देखना तुम्हारी दोस्तों ने सब ने तुम्हें छोड़ जाना, फिर तुम अकेली रह जाओगे। फिर उसे हाँ, इंसान कहता है हाँ वाकई ना, देखो ना ऐसे तो है ही। शैतान कहता है ये तुम्हारे घर वाले हैं ना, ये तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे। शैतान कहता है ये तुम्हारे हस्बैंड के दिल है ना, तुम्हारे से फिर जाएगा, किसी और तरफ चला जाएगा, ये तुमने अगर ये इस तरह से किया तो। शैतान कहता है अगर तुम ये फलाने की इस तरह की गैदरिंग में ना पहुंची, इनकी हाँ में हाँ ना मिलाई, इनके साथ इनकी इन शैतानी महफिलों में ना बैठी, तो देखना ये सारे तुम्हारे मुखालिफ हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे, तुम कोई रह सकती हो अकेली। तो वो अपनी वो जो उसके शैतानी काम है ना उनकी तरफ लाने के लिए और लोगों को डरा के अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए वो इस तरह की चालें चलता है, खौफ पैदा करता है। और जब इंसान डर जाए, जो डर गया वो मर गया, याद रखिए। एक वक्त वो भी आया था कि रूस के अंदर पिछली सदी में ही ऐसा वक्त था कि इस्लाम का नाम लेना वहां पे जुर्म था, वहां पे लोगों ने कुरान जो पढ़े तो अपने घरों के अंदर सुरंगे बना के उनके अंदर कुरान के नुस्खे रखे, किसी जगह कुरान का नुस्खा अलाउड नहीं था, उठा के ले जाते थे, वो छुपाए हुए थे उन्होंने, और वहां पे सुरंग के अंदर जाके बैठ के पढ़ते थे, जिसने पढ़ना होता था, जो कोई बहुत ही वो थे, बाकी सब चोर चाड़ गए, मस्जिदों को अस्तबल बना दिया था। तो ऐसे ऐसे हालात भी गुजरे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं नहीं तुमने डरना नहीं है, हालात आते हैं और शैतान डराता है अपने दोस्तों से, ये ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब इंसान ना खौफ ज्यादा हर वक्त रहता है ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो फिर वो क्या कर सकेगा, वो क्या दीन पे जम सकेगा, नहीं जम सकता। तो इस तरह इंसान के कदम उखड़ जाते हैं। अब मदीना की बस्ती में आपको पता है कितना खौफ और हरास कितना हर वक्त होता था कि यहां से ना हमला हो जाए, वहां से ना हमला हो जाए, वहां से ना, फिर वो किस तरह जीते थे वहां, कैसे वो नेकियों पे कारबंद रहते थे, कैसे वो दीन के ऊपर चलते थे, क्योंकि वो एक अल्लाह से डरने वाले थे। और अगर वो इन्हीं चीजों से डरते रहते वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे, वो तो आप सरसरम को नहीं पनाह दे सकते थे वहां। तो फला तखाफून व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, तो इस आयत को आप हाईलाइट कर लें। जब शैतान खौफ दिलाए तो ये पढ़ लिया करें कि अल्लाह ताला ने तो खुद बता दिया है कि ये डराएगा अपने दोस्तों से, तुमने नहीं डरना। अगर तुम वाकई ईमान वाले हो, अगर वाकई तुम्हारा ईमान हकीकी है, इसका मतलब ईमान में रिक्वायरमेंट है कि आपको खुदा का खौफ होना चाहिए बस। क्योंकि जब ईमान का हिस्सा है ना कि हम जब ईमान रखते हैं कि हाँ नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से हो सकता है, वरना कोई नहीं, कोई मेरा नुकसान नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, कोई मुझे नफा नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, जब हम ये कहते हैं तो फिर ये ईमान कहाँ चला जाता है? उस वक्त वो तो कहीं भाग ही जाता है, पता नहीं कहाँ होता है, वो तो याद ही नहीं रहता। जब हम कहते हैं जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जब तक ना चाहे मौत आ नहीं सकती, फिर इतना डरते हैं, फिर भी डर रहे हैं, तो फिर ईमान कहाँ है? जब तक अल्लाह ताला का इज़्ज़न ना हो, खैर और शर उसके हाथ में, अल्लाह ताला का इज़्ज़न ना हो, शर तो आ ही नहीं सकता, तो फिर ये ईमान कहाँ गया? इसीलिए कहा अगर वाकई तुम्हारा ईमान है ना, बातें तुम ये कहते हो, ये मुंह की बातें नहीं है, वाकई तुम्हारा इसके ऊपर बिलीफ है ना, तो फला तखाफूहुम व खाफूनी। तो वो तो डराएगा कि अल्लाह की इताअत ना करो, वो तो डराता ही रहेगा छोटी छोटी बातों पे। हम तो इतने पे ही डर जाते हैं लोग ना हमें छोड़ जाएं, और तो बातें छोड़ें, दोस्ते ना छोड़ जाएं, कुर्बानी हम तो दोस्तों की भी नहीं दे सकते। वला यहज़ुनकल लदीना युसारिऊना फिल कुफ्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बड़े गमगीन रहते थे, ये लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं, ये तो बजाय इसके कि ये बात को माने, ये तो और दौड़ धूप करते हैं कुफर के अंदर, कहाँ तक पहुंच रहे हैं। उनके ऊपर वो थे कुछ लोग जो मुर्तद हो गए थे, उनके ऊपर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख था, काफरों के कुफर के ऊपर दुख था, उनकी सरगर्मियां जो एक्टिविटीज इतनी जो करते थे कुफर में, उनके ऊपर दुख था कि ये अपने साथ क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए नबी अला यासुन का, ना आप गमगीन आप करें अपने आप को, किस चीज से? अल्लादीना युसारे होना फिल कुफर, वो जो जल्दी करते हैं कुफर में, तेजियां दिखा रहे हैं कुफर में, भाग दौड़ कर रहे हैं कुफर में। ये लोग कुफर में जितनी भी तेजियां दिखाएं, इन्नहुम लन यदुरुल्लाह शय, ये अल्लाह का कोई नुकसान नहीं दे सकते। देख ले मैंने आपको जो रशिया की बात बताई कि ऐसा एक वक्त आया था, तो क्या हुआ, इस्लाम को मिटा सके? वो नहीं मिटा सके, अल्लाह का कुछ नहीं नुकसान कर सकते। अल्लाह का नुकसान का करना मतलब उसके दीन का कुछ नहीं, उसके दीन को नहीं कुछ नुकसान पहुंचा सकते, उसके दीन के खिलाफ कितनी भी साजिशें कर लें, कितने आज भी लोग ये देखें, हम सोचते हैं ना ये जो आज की ये जो सारी चीजें हैं, ये शायद प्रोपोगंडा आज हो रहा है, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें आज हो रही, नहीं, ये जब से इस्लाम आया है तब से ही ये है, और हर पैगंबर के दौर में ऐसा ही रहा। क्या नूह अलैहिस्सलाम नहीं सताए गए? क्या उनको नहीं टॉर्चर किया गया? क्या उनको नहीं अजियतें दी गई? क्या हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई पैगंबर भी उठा के देखे? लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा था कुफर में, वो भाग दौड़ करते थे। आप देखें जब वो आग जला रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, उन्होंने कितनी उसके लिए दौड़ धूप की, तो सारे ही लग गए, पूरी कौम ही लग गई वो, कि आग बड़ी से बड़ी भड़काए, वो आग भड़का के अपने बुतों की मदद करो, वो कहते थे अपने खुदाओं की मदद करो, वो खुदा भी कैसे जिनको मदद की जरूरत है। तो यानी उन्होंने हर दौर में ये होता रहा, और आज ये नई बातें नहीं है। हाँ टूल्स नए हो सकते, उस जमानों के अंदर और तरह से करते थे, आज और तरह से दौड़ धूप कर रहे हैं, मगर ये जो शैतानी टोला है शुरू से लेके जो आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से लेकर और कयामत तक, एक तरफ शैतानी टोला रहेगा, एक तरफ ये शैतानी लश्कर रहेंगे, और एक तरफ अल्लाह के लश्कर होंगे, हिजबुल्लाह होगा, एक तरफ अल्लाह का लश्कर होगा, और ये टसल चलती रही है और चलती रहेगी, ये कभी खत्म नहीं होनी, ये ऐसे ही रहनी है जब तक अल्लाह ताला कयामत ना बर्पा कर दे। ये हक और बातिल के अंदर एक कश्मकश जारी है और जारी रहेगी, और इस समय कुफर वाले अपनी पूरी फुल कोशिशें कर रहे हैं। आज देखें किस किस तरह से दौड़ भाग हो रही है, मुसलमानों का ईमान इनसे छीन लिया जाए, इसके लिए सोशल मीडिया पे कितनी कोशिशें होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदजन कर दिया जाए, इस दीन से बदजन कर दिया जाए, इनके बारे में डाउट्स पैदा कर दिए जाएं, कंफ्यूजन्स पैदा कर दी जाएं, इनके ऊपर ऐसे ऐसे सवालात उठाए जाएं कि लोग परेशान ही हो जाएं, उनको अपने दीन का तो कुछ पता है नहीं, तो चलो इस तरह ही, और इनको ऐसा इंगेज किया जाए दूसरी चीजों के अंदर कि इनको अपना दीन व इन कुछ ना याद रहे, इनको निकालो इस दीन से, ये जरा उनके नजदीक ये नॉर्मल नहीं है, इनको इनको नॉर्मल करो। सब एक ही तरफ चले हैं, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ऐसे प्रोफेसर हैं जो एथीस्ट हैं और एथीज्म फैला रहे हैं। हमारे अपने मुसलमान मुल्कों में हमारी यूथ कई एथीज्म की तरफ जा चुकी है, किस किस तरह की कोशिशें हो रही हैं। क्रिश्चियंस अपनी कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं, वो कन्वर्जन्स कर रहे हैं कि वो तो इस मिशन के ऊपर है, और क्या क्या आपके रिमोट एरियाज के अंदर हो रहा है जहाँ पे बेचारे गरीब लोग अनपढ़ जहालत इतनी ज्यादा है, नाम के ही मुसलमान है, तो वहां पे उनको नाम का मुसलमान भी नहीं रहने दिया। वो अपनी जहाँ पे हम नहीं जाते, जिन एरियाज में हम नहीं जाना पसंद करते, हम तो बस शहरों तक स्टिक टू करते हैं ना, और कुर्बानी किसने देनी कि जो कोई जाके काम करे, तो ये लोग वहां तक पहुंचते हैं, अंदरूने सिंध तक पहुंचे, मिशनरीज अपना काम कर रही हैं, कादियानियत फैलाने वाले कहां तक पहुंचे। में पिछले दिनों एक रिपोर्ट देखी थी, कहां कहां तक पूरे पूरे गांव उन्होंने कादियानी कर लिए। तो कुफर तो अपनी कोशिशों में लगा, वो तो चैन से नहीं बैठा। अब जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की नहीं कि बस हम डिस्कस करके बैठ जाए, मुझे अच्छा अच्छा जो वो देखो ऐसे कर रहे हैं, आए हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं, यहूदी हमारे लिए कर रहे हैं, हिंदू हमारे लिए साजिश कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं फलाना, ओ भाई इससे क्या होगा, आप बस विक्टम बन के बैठे रहो। हाँ हमारे लिए, हम बिचारे, क्या बिचारगी से होगा, वो अगर उठ के कोशिशें कर रहे हैं तो तुम भी उठ के कोशिश करो ना, तुम भी हाथ पैर हिलाओ, तुम भी अपना माल लगाओ, अपनी जान लगाओ, अपना वक्त लगाओ, कोई अपनी सलाहियत लगाओ, ऐसे लोगों को जिनके पास कोई स्किल्स हैं उनको भी मोटिवेट करो कि तुम इस अल्लाह के रास्ते में कुछ अपनी सलाहियत लगाओ, हमने करना कुछ नहीं, बस डिस्कशन करते रहे, वो हमारे खिलाफ साजिश, वो हमारे खिलाफ साजिश, तो क्या करें, आज तक पहले नहीं कभी साजिशें हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में होती थी कि नहीं साजिशें, यहूदी ने की थी या नहीं की थी, जिन्होंने सीरत पढ़ी है बताएं हुई कि नहीं साजिश, वो तो नहीं है डिस्कशन हर वक्त करते बैठे रहते थे, वो साजिश हो गई हमारे खिलाफ, साजिश हो गई वो साजिश वो हमारा तो काम ही ये है कि हम साजिशें ढूंढते रहे बस। बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट है आपकी अगर आपने साजिश ढूंढ ली है भाई, नहीं इसके पीछे फलाने का हाथ है, इसके पीछे उसका हाथ है, तो वो बड़ा कारनामा किया हमने ये हाथ फाइंड आउट करके। अब आप क्या कर रहे हैं आगे, नथिंग, सिवाय बातों के हमारे पास कुछ नहीं है आज। वो अगर युसारे उना फिल कुफर है तो हम युसारे उना फिल ईमान क्यों नहीं है, क्यों नहीं है हम उठते और हम दौड़ धूप करते, हमारे लोग क्यों नहीं बैठे हुए इतने नॉलेजेबल जो सोशल मीडिया पे हो, जो उनको जवाब दे सके, हमारा यूथ क्यों नहीं उठ खड़ा होता कि वो भी जाए और ऐसी जगहों पे काम करे जहां पे कोई नहीं जाना पसंद करता, हमारे लोग क्यों नहीं इन मिशनरीज की तरह पैसा लगाते, हम क्यों नहीं उस तरह बेलॉस होके काम कर सकते। हमारी ये सारे ऊना पता है किस में है, सिर्फ हमारी ये सारे ऊना आज सिर्फ फिरकाबाजी में, हम अपने से तो लड़ने से पहले फारिग हो जाएं फिर किसी का मुकाबला करेंगे, हमारा तो अपने लड़ने से ही फुर्सत नहीं, फिरका वो फलाना, फिरका वो काफिर, वो फलाना, फिरका वो ऐसे, वो फिरका वो ऐसे, उनका ये उनका उनकी दुकान से ना खाना उन्होंने ऐसे वो किया हुआ है, उनके हाथ का ना लेना उन्होंने ये किया हुआ है, उनके साथ नहीं आप शादी कर सकते, वो फलाने फिरके से हैं, बस ये हमारी बातें रह गई, तो हम कुफर का क्या मुकाबला करेंगे। और बाकी जो बाकी लोग हैं वो तो वैसे ही दीन से दूर हैं, तो जो दीन की तरफ आए उन्होंने अपनी सारी एनर्जी किस में लगाई हुई है कि बस हम अपने फिरके को ये साबित करें कि हमारा फिरका ही इज द बेस्ट, और यही वो फिरका है जो जन्नत में जाने वाला है। बस वो तो क्या क्या लोग सीखेंगे आपसे फिर? फिरका वारियत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। हमारी देखिए, हमारी मेहनतें या तो कुफर के खिलाफ लग सकती या आपस के अंदर ही लग सकती, एनर्जी तो एक जितनी है ना। या तो आपने पूरी अपनी एनर्जी इसमें लगा लो कि मेरा फिरका सबसे अच्छा है, या इसमें एनर्जी लगा लो कि मेरा दीन इस्लाम इज द बेस्ट। तो उसमें नहीं लग रही तो फिर आप यहाँ फिरके फिरके होने में, अपने ही लोगों के साथ बहसें करने में, उन्हीं के साथ बात करने में, बस इसके अंदर लग रही हैं, दिन रात इसी में खप रहे हैं। और उसकी लेग पुलिंग कर लो, वो ना कहीं आगे चला जाए। अच्छा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग हो गए, इतने स्टूडेंट हैं उनके, आप उनके खिलाफ बातें करो ताकि वहां से लोगों को खींचो। ये हमारे काम रह गए। जब हम इतने घटिया लेवल पे उतर आते हैं तो फिर उसके बाद क्या हम दीन की खिदमत करेंगे? जब हमारा फिरका इतना हमारे दिमाग पे सवार है कि अभी एडमिशन भी नहीं लेना, पहले पूछना, आप पहले बताएं आप किस फिरके से, आपका फिरका हमारे साथ मैच करेगा तो फिर ठीक है, वरना हमने नहीं आना। वो चाहे वो कितना ही हक की बात बताता रहे, आपको कुछ नहीं परवाह। कहीं आके छोड़ के चले जाते हैं, नहीं हम हमारे फिरके वाले नहीं है ना, इसलिए। तो वो युसारिऊना फिल कुफर कर रहे हैं, और वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं दे सकते और इस दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर वो चाहते ना कि वो मिटा दें इस दीन को, मिटना नहीं है इसने, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, युरीदुना लियुतफियु नूर अल्लाही बि अफवाहिहिम, वो तो चाहते हैं कि वो इस चिराग को अपनी फूंकों से बुझा दे, अल्लाह के नूर को। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, और अल्लाह ने अपने नूर को मुकम्मल करना ही है। वलो करी हल काफिरून, चाहे काफिर को कितना ही नापसंद हो, चाहे ये टीवियों पे बैठ के प्रोपोगेंडास करें, चाहे इस तरह की साफ पता चल रहा हो कि ये मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, या इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा हो। इस्लामोफोबिया भी क्या है, मुसलमानों के खिलाफ इतना नफरत फैला दो, इतना तैश दिला दो लोगों को, ये तो पता नहीं क्या चीज है ये है, कि वो दूसरे लोग भड़क उठें और वो कुछ कर देंगे। फिर इस्लामोफोबिया कितना फैलाया जा रहा है, ये सारी हो ना फिल कुफर है जो चल रहा है, और जवाब देने वाला कोई भी नहीं, कोई नहीं है जो इतना नॉलेज रखे कि इनको बताए कि नहीं ऐसा नहीं है, हक बात ये है, हक रखने वाला कोई नहीं। बस देख के कह देते हैं देखा उन्होंने इस तरह किया। ये हमें डिस्कस करना बड़ा अच्छा लगता है कि देखो हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है। कौन करेगा फिर ये काम? कौन करेगा? किधर से लाएं वो लोग के कौन करेगा बताएं? फरिश्ते उतरेंगे, कोई और एलियंस हैं वो काम ये करेंगे, कौन करेगा? आप भी जान छुड़ा के बैठ जाएं, आपका भी काम नहीं है, कौन करेगा फिर? तो फिर मत रोएं फिर कि ये उम्मत का हाल ये है, देखो फलाने हमारे लिए ये कर रहा है ये कर रहा है, हमारे तो दुश्मन ही बहुत है। क्यों क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? तो पहले भी ये करते थे। तुम बताओ तुम्हारे अंदर कितनी कुव्वत है, तुम बताओ तुम्हारे पास कितना इल्म है। आज जो जंग है ना वो इल्म की है, आज हथियारों की नहीं, आज इल्म की वॉर है, आज सोशल मीडिया पे वॉर है, आज हमारे यूथ को बहकाने के लिए ये हथकंडे हैं। लेकिन क्या जवाब है इनका? मैं ये चाहती हूँ कि आप कहें लब्बैक, मैं चाहती हूँ कि आप कहें कि हम सीख रहे हैं, हम इसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई और के ऊपर जिम्मेदारी डाल के आप फारिग होके नहीं बैठ सकते, अब आपसे उम्मीदें हैं, कोई नहीं और। समझ समझ लेना कि कोई नहीं और, मत देखें वो मौलवी जो साहब जो मस्जिद में बैठे हुए हैं वो जवाब दें, वो जो हैं वो जवाब दें, वो जो हैं वो करें। उम्मत वसत इज नॉट द आंसर। उम्मत वसत करेगी? उम्मत वसत तो आपकी बैठी हुई है, क्या कर रही है वो, क्या किया है उम्मत वसत ने? ये तो बड़े अच्छा जवाब है, उम्मत बसत करेगी ना, मेरा मेरा क्या काम है, मैं तो अपने हांडी रोटी करूं, शॉपिंग करूं, सेलें ढूंढूं, उम्मत बसत करती रही काम। वो उम्मत बसत कौन है? हवाई बातें हैं ये उम्मत बसत, यू आर उम्मत बसत। आप करने को तैयार हैं? आप वक्त लगाएंगे? आप ये स्किल सीखेंगे? आप दिफा करना सीखते हैं? कहीं कार्टून बनाए जा रहे हैं, आज भी खड़े होके बन रहे हैं, आज भी वो वही चीजें, युसारी ना फिल कुफर लगा हुआ। कैसे दुनिया को बताएंगे कि नबी अलैहि सलातो वसलाम कौन थे, कैसे थे? वो ये नहीं थे कि तुम ये करो, कि
कैसे समझाएंगे? ये कोई जवाब नहीं होता जाके वहां पे किसी को गोली मार दी, किसी को ये कर दिया, ये कोई जवाब नहीं हो सकता। जवाब ये है कि आप दुनिया को दिखाएं कि हमारे नबी कैसे थे, ताकि आइंदा कोई इस बात को करने की ना जुर्रत करे। और सूरज को थूक कोई फेंके सूरज के ऊपर तो उसके अपने मुंह पे ही गिरता है, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह के दीन को ना कोई फर्क पड़ता है, ना उसके रसूल की शान में कोई कमी आती। अगर हाँ, आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या रोल है, आप अपना तो पहचाने, या पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट लेते जाना, किताबें भर भर के रखते जाना। सभी मसरूफ इतने हैं, कौन करे ये काम? अल्लाह के दीन का लावारिस है आज, वो सब अपने काम है। अल्लाह के दीन के लिए कोई वक्त निकालने वाला नहीं, कोई वो इल्म लेने के लिए इतना नहीं जुस्तजू करने वाला, इतने मेहनत नहीं करने वाला कि कल को हमने ये काम करना, हम दिफा करें इस दीन का, इसके लिए मैं सीखूं। सबके अपने एजेंडे हैं सीखने के भी। किसी का सर्टिफिकेट है, किसी के आगे बड़ा बनना है, किसी का लोगों को दिखाना है मैं आलमा बन गई, किसी का कुछ करना है, किसी का कुछ करना, तो फिर क्या होगा? हाँ, जो इस चीज के लिए कहेगा कि मैं अल्लाह के दीन का दिफा करूं, इसके लिए ये मैं इल्म हासिल कर रही हूं कि मैं कल को ये काम करूं, मैं आगे बताऊं, वो तो फिर उसकी जान भी जाएगी ना, तो शहादत है इस रास्ते में। यरीदुल्लाहु अल्लाह यजअललहुम हज़्ज़न फिल आखिरती। अब एकदम दिल में क्या ख्याल आता है, ये इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें तो ऐसे लगता है हमारा तो कोई है ही नहीं। हमें तो ऐसे लगता है कि ये इनको खुली छुट्टी मिली हुई है, क्यों नहीं अल्लाह इनको पकड़ता, क्यों नहीं पकड़ता? इसका जवाब है ये, युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरति वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला उनके लिए कोई हिस्सा नहीं रहने देना चाहता आखिरत में। अल्लाह नहीं चाहता कि आखिरत में इनका कोई अमल भी बाकी रह जाए जिसकी इनको वहां पे जजा मिले, कोई नेकी इनकी बाकी रह जाए, कोई इनकी भलाई की चीज बाकी रह जाए जिसका इनको वहां पे कोई अजर मिलना हो। अल्लाह चाहता है कि यहाँ पे इनको सब कुछ दे दे कि आखिरत में इनके लिए अब कुछ नहीं। वहां पे क्या है? वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, वहां पे उनके लिए बड़ा अजाब है। तो अल्लाह ताला इसलिए कि ठीक है कर लो, जितना करना है करो, अल्लाह का कुछ बिगड़ता नहीं है, अल्लाह का कुछ नहीं जाता। हाँ, मगर तुम अपनी पूरी कोशिशें कर लो ना, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए और आखिरत में तुम्हारे लिए कोई हिस्सा ना रहे, वो नेकी बचे ही नहीं उनके। अल्लाह फेयर है ना, किसी का भी रखता नहीं है, देख लें आप, यहां से पता चलता है। अगर अल्लाह किसी का नहीं रखता, यहीं पे उनको दे देता है, ये ले लो, ये दुनिया में छूट ले लो, खुली छुट्टी मिली हुई है। याद रखिए, अगर किसी को दुनिया में बहुत ऐश और आराम मिल रहा है, बड़ी कुछ मिल रहा है, और अल्लाह ताला उसको पकड़ भी नहीं रहा, तो इसको सोचना चाहिए कि इसका मतलब है कि आखिरत में पकड़ आएगी, अल्लाह ताला ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। आखिरत में उसकी ये सारी जो भी उसने यहाँ पे किए, मैं इसका जवाब देना। इन लदीन अश्तरवुल कुफ्र बिल ईमानी लन यदुरुल्लाह शैआ। ये लोग जो खरीद रहे हैं ना कुफर को ईमान के बदले, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह का। ये जो तदबीरें कर रहे हैं, ये जो दीन इस्लाम के मिशन को नुकसान देने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें यहूदी भी थे और इनमें मुनाफिकीन भी थे। यहूदियों ने भी, उनके सामने भी ईमान के बदले कुफर लेने का मतलब क्या है, यानी सौदा कर लिया, समझ लें ऐसे ही जैसे सौदा। ईमान था, एक आप खरीदते किस चीज को है, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, और देते कोई चीज है तो कुछ देते हैं ना, तो जो आपके पास थी उसको दिया और दूसरी चीज ले ली। यहाँ पे क्या किया, खरीद लिया कुफर को बदले ईमान के, ईमान दे के कुफर खरीद लिया। कैसे ईमान था इनके पास? इनके पास इनकी किताबों के अंदर पेशीन गोईयां थी, इनके पास साफ वाजे सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद थी, ईमान था ना। इन्होंने दे के और क्या चीज लेनी कबूल की, कुफर को। दूसरे मुनाफिकीन, मुनाफिक तूने तो कलमा भी पढ़ लिया था, तो तेरे पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तूने गिव अप किया उसको और कुफर लिया। लन यदुरुल्लाह शैया, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। और पूरी दुनिया भी अव्वल आखिर, वो हदीस कुदसी है ना, अव्वल आखिर आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी बंदे तक, जिन्नो इंस हर कोई बच्चा बूढ़ा जवान सब मर्द औरतें सबसे बदतरीन के दिल की तरह भी हो जाए तो अल्लाह की बादशाहत में रत्ती बराबर नहीं फर्क पड़ता। उसको क्या, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लोग नाराज होके दिखाते हैं ना कि अल्लाह ने मेरे साथ ये नहीं किया, मैंने अब नमाजें पढ़नी, मैं तो अब दीन बदल लूं, मैं तो अब ये कर लूं, तो अल्लाह को क्या फर्क पड़ता है? तुम अल्लाह को अपना तेवर दिखाते हो, अब नहीं हमने नमाज, हमें नमाजों ने क्या दिया, या नहीं आपकी नमाजों की कंडीशन ये थी कि मैं इसलिए पढ़ती हूँ कि अल्लाह मुझे कुछ दे, यानी कंडीशनल नमाजें थी, कंडीशनल इबादत थी। वलहम अजाबुन अलीम, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। पहले अजीम था, वाफिर, बहुत ज्यादा बड़ा, अब है उसमें दर्द भी बहुत होगा।